कृष्णा। तो संडे के दिन आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। फर्स्ट टाइम कितने लोग आ रहे हैं, हाथ खड़े कीजिए। ये सारे पहली बार हैं, चलो देर आए दुरुस्त है। सभी लोग इनके लिए बोलो हरि बोल। देखिए हमारे इस मूवमेंट में, इसका विशेषकर हमारे लोगों को ये कहना है, शास्त्रों का भी यही कहना है, विशेष हमारी बात नहीं है, कि जो भी व्यक्ति यहां पर पहली बार आता है या जो पुराने आ रहे हैं, ये सारे के सारे गेस्ट हैं। किसके? भगवान के गेस्ट है ना। जैसे आप लोग किसी के घर जाते हो, आप वहां पर जाते हो है ना, और आपका वेलकम अच्छा होता है और खाने के लिए मिलता कुछ ना कुछ। तो यहां पर भी जब कोई भी साधारण भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बस निकल रहा था, उसने लगा चलो आप दर्शन करके निकलते हैं, ये कुछ प्लान बनाया था चलो आज इस्कॉन चलते हैं, तो आ गए। उनको लगता है कि एक सिंपल सी एक ऑर्डिनरी घटना है, बस ये बस ऐसे ही आ गए हम लोग। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए आध्यात्मिक जगत में और आध्यात्मिक जितनी भी एक्टिविटीज होती है, इसमें कोई भी चीज साधारण नहीं होती। हमें लग सकता है अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री किसी को अपने घर बुलाए तो कोई साधारण सी घटना है क्या? साधारण घटना नहीं है। बड़े नहा धोकर लोग सज धज कर लोग ठीक ढंग से जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि पहली बार जा रहे हैं क्या बोलना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, कुछ बताइए, है ना जी। और कई लोगों को बताएंगे आज हम आज जा रहे हैं। तो इसी तरह हम तो केवल एक देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इस प्रकार पौने 200 से ज्यादा देश हैं संसार में, बड़े सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो केवल मालिक है इस संसार का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का नहीं, इस प्रकार के इननोमरेबल ब्रह्मांड्स आर फ्लोटिंग ऑन द एयर, हर जगह ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। और ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग रहते हैं, और उसमें इतने सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें से एक लोक है पृथ्वी लोक, और उसमें से भी इतने सारे देश, उसमें से एक देश है भारत, और उस भारत के लगभग 30-35 राज्य हैं, उसमें से एक स्टेट है क्या? दिल्ली। और दिल्ली जैसे में 100 सिटीज हैं अंदर ही अंदर, 100 नगर हैं, उसमें से एक नगर है पंजाबी बाग, और पंजाबी बाग में भी लाखों लोग रह रहे हैं, और 50-60 मंदिर भी होंगे, उसमें से एक मंदिर है कौन सा? इसका नाम। और उसमें श्री श्री राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं, श्री श्री राधा राधिका रमन और कृष्ण बलराम, उन्होंने इतने बड़े ब्रह्मांड में से कुछ लोगों को चुना है कि आइए आज आप मेरा दर्शन कीजिए, तो साधारण सी घटना है नहीं। और किसने बुलाया? उस व्यक्ति ने जिसके कि पूरा ब्रह्मांड जिनका है, जिनके इशारों पर चलता है। ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड उनके इशारों पर चल रहे हैं, साइंटिस्ट परेशान है ऐसे चलते हैं, नहीं शायद ऐसे चलते हैं, नहीं जब वैक्यूम होता है या ऐसा होता है तब चलते हैं, नहीं नहीं बिग बैंग हुआ इसलिए चलता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये फिलॉसफी तो आपकी बनाई हुई है। लेकिन स्पिरिचुअल फिलॉसफी क्या कहती है कि सारी की सारी क्रिएशन अभी नहीं हुई है। हम लोगों ने एक बार लास्ट में सीडी दिखाई थी यहां पर, डिवोटीज, हमारे टेम्पल के डिवोटीज नहीं, उस सीडी को बनाया द ट्रायल, दो भाइयों की झगड़ा है। एक भाई कहता है भगवान भगवान नहीं होते, दूसरा भाई कहता है होते हैं भाई, तो दोनों जो है लॉयर्स हैं और कोर्ट में पहुंच जाते हैं, उसकी सीडी शायद अवेलेबल होगी ट्रायल करके। उसमें वो कहता है कि अगर भगवान है तो दिखाओ, जज साहब भी बैठे हैं उसमें। और फिर धीरे धीरे बड़ा एक रोमांचकारी सिचुएशन होती है, क्योंकि भारत में तो अगर ऐसी कोई बात करे कि भगवान नहीं होते तो बड़े अजीब सी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक SMS भेजा हमने, एक दिमाग में आई चीज कि कई बार लोग बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है। हाँ ये बोलते हैं कि भगवान देखता है, कैसे देखता है? भगवान सुनता है, कैसे सुनता है? अल्लाह सुनता है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी हर चीज को देख रहा है, लेकिन कैसे? बिना आपके। तो बताया जाता है शास्त्रों में कि तीन प्रकार जिससे भगवान को जाना जा सकता है। एक है निराकार स्वरूप में, गलत नहीं है बट निराकार स्वरूप में बोला जाता है, जिसमें माना जाता है जैसे सरकार एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारे सामने मनमोहन सिंह जी हमसे सारे रूल फॉलो करवाने नहीं आते, है ना। आप रेड लाइट क्रॉस करो तो अपने सरकार के नियम आपको बांध लेंगे। उसी तरह भगवान की भी शक्ति है और भगवान भी है, एक पर्सन है। तो किसी को लोग बोलते नहीं नहीं निराकार में निराकार है, तो बताया कि ये ठीक उसी प्रकार है जैसे दो भूत आपस में बातें कर रहे हो और एक भूत दूसरे भूत को कहता है यार ये आदमी बात नहीं होते क्या तो उनके लिए शायद हम एग्जिस्ट नहीं करते, या उनको दिखते नहीं, या हमें भूत नहीं दिखते, जैसे हम बोलते हैं भूत भूत होते हैं क्या, आप विश्वास करते भूत नहीं। तो उसी प्रकार जिन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है या जिनका ज्ञान जिस लेवल तक है वो उतनी ही बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने आगे ग्रंथ पढ़े हैं, जिन्होंने हायर स्टडीज की, उनको भगवान की हर प्रकार की अनुभूति और उनकी हर स्टेज में किस किस स्टेज में कैसी कैसी रियलाइजेशन होती है सब मालूम। निराकार स्वरूप के बारे में उन्हें मालूम है, भगवान के जो है परमात्मा स्वरूप के बारे में उनको मालूम है। जैसे लोग बोलते हैं जर्रे जर्रे में भगवान है, कण कण में भगवान है, और फिर भगवान का भगवानवादी स्वरूप भी लोगों को पता है, उन लोगों को जिन्होंने हायर स्टडीज की। जिन्होंने केवल एक दो बुक तक पढ़ी है तो उसमें उतनी ही बातें, ये जिन्होंने खाली सुना है उनको जितना समझ आ गया, जिसके कॉन्टेक्ट में आ गए उतनी नॉलेज जिसने उसको ट्रांसफर कर दी, दैट सब। लेकिन वास्तव में वो भगवान ने जो ये क्रिएशन करी, और जैसे हमने बताया कि जिस प्रकार हम समुद्र के मतलब बीच में खड़े होकर जो रेत के कण हैं उसको गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, लेकिन बताते हैं इतने सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं हवा में, यहां पर नहीं, मतलब हम तो एक ब्रह्मांड के अंदर हैं, इस प्रकार के बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और जितनी क्रिएशन है इस ब्रह्मांड की वो केवल 25% है टोटल क्रिएशन का। इसका मतलब क्या हुआ, 75% स्पिरिचुअल क्रिएशन है, स्पिरिचुअल पॉपुलेशन है, जो हमारे को या हम उसको परसीव नहीं कर सकते इन इम्परफेक्ट सेंसेस से, या इम्परफेक्ट इंटेलिजेंस से, या माइंड से। बताते हैं ना तत्र वाक गच्छति, ना हमारी वाणी वहां तक जाती है, ना ये नेत्र वहां तक जाते हैं, ना हमारी थिंकिंग वहां तक जाती है, हमारी तो आवाज भी यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस के साथ हम लोग उस व्यक्ति को या उसके धाम को या उनकी उस एक्टिविटीज को जो कि सारी ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर होती हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं इन लिमिटेड चीजों से। हम ये नहीं जानते इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो उन भगवान को या उनकी उन कथाओं को या उनके उन पार्षदों को या उनकी उन लीलाओं को जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रही हैं या होती रहती हैं, इस बुद्धि से इस माइंड से कैसे समझ लेंगे। एक स्कूल में क्लासरूम में साइंस के टीचर ने बच्चों को सिद्ध कर दिया कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे, कहा कि कुछ भी चीज है जिसको हमको एग्जिस्टेंस को फॉलो करना है, जिसको मानना है, वो हमें दिखनी चाहिए, उसे हाथ लगा सकें, उसे फील कर सकें, तो ना भगवान को देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना हाथ लगा सकते हैं। इट मीन्स गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चे चुप रहे, ये क्या मतलब, आज सर को क्या हो गया। एक बच्चा उठा, सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। कहते बोलो बेटा। कहते मैं भी सर कुछ बताना चाहता हूं। बच्चों हमारे सर ब्रेनलेस हैं। कहते ये क्या बात कर रहे हो। कहते सर आपके ब्रेन को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, इट मीन्स यू आर ब्रेनलेस। कहते नहीं समझ आ गया, ठीक है बैठ जाओ। तो भगवान को समझना, अगर हम लोग समझना चाहते हैं जो उसी व्यक्ति की तरह है, जो व्यक्ति यहां पर खड़े होकर चांद को हाथ लगाना चाहता हो, एक बोना चांद को हाथ लगाना चाहता है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारी जो इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, इससे हम भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग सही प्रोसेस को फॉलो ना करें। ऐसा नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री के पास जा नहीं सकता, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सुबह शाम वो चाय की दुकान पर बैठा, ऐसा नहीं कि अचानक उसको लेटर आ जाएगा एक दिन कि आज आज मिल लो, नहीं, उसको प्रोसेस फॉलो करना है। क्या उसको लिंक्स निकालने पड़ेंगे, और खुद के अंदर कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, खुद को भी कुछ किसी बात को करने के लिए जाने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए, और फिर उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, किसको अप्रोच करना है, किस तरह लेटर्स देने हैं, किस तरह बात करनी है, उसको कब उसका नंबर आएगा, तब जाके देख लेगा। लेकिन उसी प्रकार भगवान को भी देखा सुना कहा सब कुछ जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता इसमें लगभग 700 श्लोक हैं, और एक एक श्लोक को समझने के लिए हजारों तत्ववादियों ने खूब प्रयास किया और लगभग 1500 तरह की भगवद गीता लिख डाली। इसलिए इतनी सारी भगवद गीता मार्केट में है कि आज व्यक्ति कंफ्यूज है ये सुनकर भी, समझ कर कि भगवान है भी कि नहीं, क्योंकि कई गीता ये सिद्ध करती है कि भगवान नहीं है, ऐसी गीता, और गीता है क्या, भगवान का गीत, वो सॉन्ग द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कहां पर गाया उन्होंने, कुरुक्षेत्र में गाया। कितनी देर में गाया, 45 मिनट्स ओनली। किसको गाया, किसको सुनाया, अर्जुन को सुनाया और यह हमारे लिए लॉ बुक बन गई, हमारे लिए धर्म बन गया। और इसके अंदर जो चीजें बातें लिखी हैं, आज तक कभी आपने सुना किसी न्यूज़पेपर में, किसी रिपोर्टर के द्वारा, किसी पॉलिटिशियन ने कि इसके अंदर बताया हो कि इसके अंदर जो है 15वें अध्याय का 8वां श्लोक कैंसिल हो गया जी, अब वो चलता नहीं आजकल, इसकी जगह न्याय बोलिए, प्रधानमंत्री सर आप बोलिए कि न्याय बोलिए, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिन्होंने ये बोली या लिखी है वो लोग हमारी तरह कंडीशन नहीं थे, हमारी तरह इनपरफेक्ट नहीं थे। हम लोग मानते हैं वो बात अलग है कि अपने को परफेक्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी हम इनपरफेक्ट हैं, हमारी सेंसेस इनपरफेक्ट हैं, हम लोग ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते, ज्यादा दूर तक सुन नहीं सकते, हम लोग जो है हमेशा टू बी इल्यूजन, हमेशा भ्रम में रहते हैं। अंधेरा हो जाए तो हमारी सेंसेस यूजलेस हो जाती है। अगर आज अंधेरा हो जाए तो आंखों वाले भी क्या है? अंधे हैं। अब आंखें बंद करके देखिए कुछ दिखता है? नहीं दिखता, एक चीज दिखती है खाली, अंधेरा। उसे अगर आंखें हैं और कोई अंधा है तो अगर लाइट नहीं है भगवान के द्वारा दी जाने वाली तो उसका कोई यूज नहीं। तो इम्परफेक्ट सेंसेस और भ्रम में रहते हैं, और जब भ्रम में रहते हैं तो गलतियां करते हैं। तो ये तीसरा गुण है हमारा, हम गलतियां करते हैं। इसलिए कई बार बोला जाता है आदमी गलतियों का पुतला है, क्यों? गलतियां करता है। और फिर मेंटालिटी क्या, चीटिंग प्रोपेंसिटी। जब कोई गलती करता है तो उसको छुपाने का प्रयास करता है, दूसरों को धोखा देने का प्रयास करता है। तो चार प्रकार के अवगुण हर आदमी में है। लेकिन जब ये ग्रंथ लिखे गए व्यासदेव जी के द्वारा बोले गए, और भगवान ने जब इसको बोला तो भगवान क्योंकि परफेक्ट है, उनकी क्रिएशन परफेक्ट है, सूरज रोज सुबह सही टाइम पर निकलना और सही टाइम पर अस्त होना, ऋतुएं अपने समय पर बदलना, सारे के सारे ब्रह्मांड में जितने प्लैनेट्स हैं अपने हिसाब से फ्लोट कर रहे हैं, सूरज अगर एक सेंटीमीटर भी अंदर की दिशा में घूमने लग जाए तो हम लोग जल के मर जाए, और एक सेंटीमीटर कुछ अपनी कक्षा से अपने उस ऑर्बिट से थोड़ा सा बाहर हो जाए तो फ्रीज हो जाए। कितना सुंदर सिस्टम चल रहा है, कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? डार्विन? हाँ, कौन चला रहा है? न्यूटन? भगवान चला रहे। सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा। वो बोलते हैं ऐसी बात, मैं नहीं बोल रहा, वो बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धाभाव समन्विता, कि मैं जो हूं आई एम द कॉज ऑफ एवरी स्पिरिचुअल, जितने भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटीरियल क्रिएशन है, आई एम द मेन कॉज बिहाइंड इट। किसी साइंटिस्ट ने अपनी लेबोरेटरी में नहीं बनाया कि दो प्रकार के केमिकल मीथेन गैस और इस गैस को मिलाकर अचानक एक ब्रह्मांड बन गया, या एक ब्लास्ट हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और एक बिल्डिंग बन गई, उसमें आपने प्लॉट ले लिया। ऐसा नहीं होता, ब्लास्ट से केवल डिस्ट्रक्शन होती है। नहीं तो दिवाली में तो लोग बड़े बम बजाएं, बेटा कौन सा मकान चाहिए, 2 रूम 4 रूम 6 रूम कौन सा चाहिए बेटा, कौन सा बम बजाऊं बताओ तो पता चला मकान के अंदर बम बजाया और मकान में नीचे आ गया, है ना, तो होमलेस हो गए। तो कहने का क्या मतलब है, भगवान जो है वास्तव में, कई बार लोग और भी एक डेफिनेशन देते हैं भगवान की, सुनिए इसलिए उसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कहीं लिखी नहीं है, अगर लिखी होगी तो किसी कवि ने, किसी ने जो पीएचडी कर लिया है उत्पटांग सब्जेक्ट में तो उसने फिलॉसफी दे दी। भगवान मतलब भा से भूमि, है ना, बोलते ना आ से अनल, है ना, गा से गगन, वेरी गुड, वा से वायु और ना से नीर, तो इससे बन गया भगवान। कितना सुंदर है ना, एकदम बिल्कुल सेट बनता है ये, और कोई भी विश्वास कर लेगा, बिल्कुल सही जी। और कई लोग मुझे मतलब हमें भी समझाते हैं, बोलिए भगवान का मतलब बताएं, मतलब बताओ, तो ये बताते हैं। अब ना जाने कैसे सेट हो गया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है इंटरनल पोटेंसी और एक है एक्सटर्नल पोटेंसी। इंटरनल पोटेंसी जो है वो श्रीमती राधा रानी है जो भगवान के साथ खड़ी है। कई लोग पूछते हैं राधा रानी क्यों खड़ी होती है साथ में, आप नहीं हो सकते इसलिए वो खड़ी राधा रानी इसलिए खड़ी है क्योंकि भगवान की वो अंतरंगा शक्ति है। भगवान को कुछ भी सोचना है, कुछ भी करना है, या उनको हमेशा जो भी एक्टिविटी करनी है, उसमें राधा रानी के थ्रू ही होती है। क्योंकि राधा रानी तीन शक्तियां हैं, समन्वय शक्ति, हलादनी शक्ति और संधनी शक्ति। आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ा मैंने कहा ना हायर स्टडीज करेंगे तो पता चलेंगे, हम लोग प्लेटफॉर्म पे घूमते रहते तो पता नहीं चलता ज्यादा, जितना ओवरव्यू लेंगे ट्रेन से चलोगे सब दिखेगा, कहां गांव है, कहां नदी है, कहां क्या है ना।
तो इस प्रकार वो अंतरंगा शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है दुर्गा जी। राधा रानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो है अधिष्ठाता है भगवान के कहने पर और सब कुछ उसको मेंटेन करती हैं, और बहिरंगा शक्ति अर्थात दुर्गा इस संसार को मेंटेन करती है। दुर्गा, दुर्ग शब्द का मतलब होता है किला, जेल टाइप, और दुर्गा मतलब जेलर, लाइक इसकी अधिष्ठाता देव। तो जो ये ब्रह्मांड है, जो भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है, जो पांच महाभूत है भूमि जल अग्नि वायु आकाश, ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। इसको भगवान नहीं बोलते कि भूमि जल अग्नि वायु भगवान है, ये भगवान की एक शक्ति है जो कि भगवान ने क्रिएट की है हम लोगों को बनाने के लिए, इस संसार को बनाने के लिए। जो भी हम देख रहे हैं केवल इन पांच चीजों से बनी है, छठा मटीरियल नहीं है डाला इसमें। है कोई छठा मटीरियल? सोच कर देखो, सोचना क्या, चेक करके देख लो, छठा कोई मटीरियल नहीं है, केवल फाइव मटीरियल है। हमारा बॉडी भी इससे बना है, बड़े बड़े पहाड़ पेड़ ये सब इसी से बना है। तो ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। तो जो भगवान इतने शक्तिशाली हैं, जिनके कहने पर, जिनके इशारे पर सब चलता है, भगवान गीता में कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति सुयतसा चराचरम। अगर ये सब गीता अगर पढ़ लेना तो कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा धर्मान धर्म के मामले में। कितने लोगों ने पढ़ी गीता? एक, दो, ढाई, तीन, पांच, बस ये समस्या है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रवचन दे तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा बोलते हैं जी वो, और हमें तो कुछ बोलते ही नहीं, इसलिए फंस जाते हैं लोग। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए पहले अपने को पक्का कर ले, अपने को इस गीता के द्वारा सारी सारी चीजों को समझ ले। और मैंने जैसे बताया 1500 तरह की गीता है, जिन्होंने दर्शन कर लिए थोड़ा स्तरफ हो जाइए प्लीज, और जो करके बैठना चाहते तो प्लीज थोड़ा स्तरफ आ जाए। तो 1500 तरह की गीता भारत मार्केट में अवेलेबल है, और किसी को कोई मना नहीं है, कोई भी टिप्पणी लिख सकता है बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को जो थॉट आया है तो मेरा जो विचार है वो टॉप मोस्ट है। इसलिए नुकसान क्या होता है, मार्केट में इतनी तरह की गीता होती है भी एक भी भक्त ढूंढना बड़ा मुश्किल है सही ढंग से। किसी ने 10 बार भी गीता पढ़ी है, अगर कोई हो यहां तो मैं चाहूंगा कि खड़े मतलब बता सकते हैं, 10 बार भी गीता पढ़ने के बाद गारंटी है कि वो गीता को पढ़ने के बाद भी वो गीता के मर्म को नहीं जानता हो। या आप अपने आस पड़ोस में ढूंढवाना कोई ऐसा व्यक्ति जिन 40-50 बार भी गीता पढ़ी हो, उसके साथ बैठेंगे, उसके बाद भी अगर उसको ना सबके सामने तत्व क्लियर कर दिया तो आप देखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इतनी प्रकार की गीता है उनमें जिन्होंने अपने पर्पस दिए हैं, उन्होंने अपनी मेंटालिटी और अपनी इंटरप्रिटेशन जो उसमें डाली है वो उसने अपने हिसाब से डाली कि मेरे ख्याल से ऐसा। तो अगर आपने अपना ख्याल मिला दिया उसमें तो आपका ख्याल की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि आप चाहते थे टीम में सचिन को नहीं होना चाहिए, है ना, तो आपके ख्याल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना जी। तो इसलिए ये कहने का क्या मतलब है, हमारे ख्याल हमारे विचारों की इस तरह कोई वैल्यू नहीं है। हमारे को जो है अगर हम इन ग्रंथों का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें तो हमें अपना समझ आ जाएगा। और ये भगवद्गीता जो यथारूप है, यथारूप का मतलब होता है एज इट इज। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जब देखा इतनी सारी तरह की गीता मार्केट में है तो उन्होंने लिखा भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब एज इट इज का मतलब कि जैसा अर्जुन ने समझा गीता को, जब भगवान ने समझाया और अर्जुन ने समझा तो उस चीज को समझाते हुए भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने गीता के परपोट्स लिखे। फिर दूसरी चीज क्या करी, इसी गीता में प्रभुपाद जी ने क्या किया कि एक एक श्लोक के संस्कृत के शब्द को पहले संधि विच्छेद किया, टुकड़ों में तोड़ा, और फिर उनका सबका मीनिंग लिखा, ताकि आपको यह ना लगे कि मैं कुछ अपने हिसाब से कह रहा हूं। जो भगवान बोलना चाह रहे हैं उसको एज इट इज उसके मीनिंग के साथ नीचे लिखा, और फिर उसका अनुवाद किया फिर वर्ड्स में, लाइक ये श्लोक, और फिर उसके बाद उसका एक एक मीनिंग दिया। अगर कोई संस्कृत नहीं पढ़ सकता, गीता का श्लोक पढ़ना नहीं आता, तो प्रयास कर सकता है एक बार। जैसे कोई भी श्लोक अगर आप लें, जैसे यहां पर है 37 नंबर श्लोक, हतो वा प्रयास, अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहां से पढ़ सकता है, इजी है। अगर फिर भी किसी का संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है तो यहां से शब्दों को पढ़ सकता है। एक श्लोक में जो 2 लाइनों में श्लोक होता है उस श्लोक में लगभग 32 शब्द होते हैं, 32,
और श्लोक को बोलते हुए हमें उसको दो भाग में, जैसे दो लाइन है तो 16-16 ऊपर नीचे हो गए, और फिर 8-8 शब्दों को तोड़कर बोलना चाहिए। इसमें जो ऊपर मात्राएं होती हैं या आधा शब्द होता है उसको हम गिनते नहीं ज्यादातर। तो जब हम उसको पढ़ें तो जैसे यहां पर है तो इसके पहले 8 शब्द यहां पर खत्म हो जाएंगे, फिर 8 शब्द दूसरे वहां पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बोला जा सकता है, जैसे हतो वा प्यात्सयसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम, देखे ना कहां रुकना अपने मालूम पड़ जाएगा। फिर तस्मा दुष्टतम कौन्तेया युद्धाय कृत निश्चया, ठीक है, लय अलग से भी हो सकती है लेकिन जनरली ये बोल सकते हैं। और फिर उसका मीनिंग दिया, हे कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाप करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यह आज का श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन के कहने पर कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि सारे मेरे रिलेटिव्स खड़े हैं और अगर मैं इनको मारूंगा इनको मार के फायदा क्या उस राज्य को लेने का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, करुणा है उनके हृदय में क्योंकि हृदय डिवोटी और भक्त के हृदय में हमेशा करुणा होती है और वो जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे रिलेटिव सामने खड़े हैं तो भाई मुझे मारना क्यों लड़ूं, और फिर मारने के बाद ये जगह मुझे मिलेगी तो फायदा क्या है। लेकिन भक्त को मालूम है कि उसको काम अपने मन के और अपने जो एक सिद्धांत चल रहा है, जैसे कि धर्म जिसका फॉलो कर रहा है, जैसे वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म का फॉलो करना चाहिए, तो अगर वो नहीं कर रहा तो फिर भगवान ने समझाया कि धर्म क्या है, क्योंकि हमेशा हायर अथॉरिटी को मानना चाहिए। जैसे घर में अगर छोटा भाई बोले बेटा, छोटा भाई खड़ा है और बड़ा भाई बोले इतनी ऊंचाई से कूद जा भाई, कूद जा, मैं भी कूदा तू भी कूद जा, है ना। अब बड़ा कूद गया क्योंकि उसको हाइट बड़ी है, आराम से उसके लिए एक सीढ़ी के बराबर था, लेकिन जो छोटा भाई है उसके लिए वो मुश्किल है, तो अगर वो कूदेगा तो उसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो जो उससे हायर अथॉरिटी है मम्मी, उसको मना कर देगी, बेटा ऐसा मत करो चोट लग जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार हायर अथॉरिटीज की जो टॉप मोस्ट नॉलेज है या उसका जो संदेश है वो हमें फॉलो करना चाहिए। अभी अर्जुन क्योंकि ज्ञानवान है, भक्त है, उसको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए कंपैशन दिखा रहा है। लेकिन अर्जुन को फिर भगवान ने यह उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन की सिचुएशन में हम लोग भी हैं, हर घर में हर व्यक्ति अर्जुन जैसी सिचुएशन में है। अर्जुन के सामने जो परिस्थिति थी उसके सारे सगे संबंधी सामने खड़े थे और एज अ क्षत्रिय उसको युद्ध करना था, उनके साथ बड़ी सारी गलतियां करवाई गई थी या उनको प्रताड़ना दी गई थी, उसको गुस्सा उसका बदला लेना था। और ऐसे सिचुएशन में जब उसने देखा मेरे गुरुजन है मेरे भाई बंद है तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, यह उसका निष्कर्ष था। और उसने कहा मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं, मेरे हाथ से मेरा धनुष छूटा जा रहा है, मेरा बाण छूटा जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे को कंपन हो रहा है, मैं नहीं लड़ सकता इनके आगे। तो फिर भगवान ने क्या कहा, भाई ये तो पूरी फिल्म खराब कराएगा, इतना पैसा लगाया इतना सारा सिस्टम करा, इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, है ना, और ये मना कर रहे हैं बताओ, है ना। सुना हमने एक बार हुआ था ऐसे, कहीं रामलीला हो रही थी तो रावण को काफी टाइम से ना पैसे नहीं मिले थे उसके एक्टिंग के, तो उसने कहा मैं जाऊंगा नहीं, पहले मुझे पैसे दो, ज्यादा बोलोगे तो धनुष नहीं तोड़ दूंगा। तो बड़ी देर तक जब देखा नहीं मान रहा ये व्यक्ति, तो फिर लाना पड़ा था ऐसा उसको दिखाया, कहते देखने से काम नहीं चलेगा, मैं हंसता होता रहूंगा हाथ में दे देना। तो हा 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 करता हूं कॉर्नर भैया जेब में रखे, कहते अब मैं उठाता हूं इस धनुष को, लेकिन तब तक फिर आकाशवाणी भविष्यवाणी दोबारा कर रही, फिर वो गया, कहते अब ठीक है काम हो गया। तो ड्रेस के साथ ही घर चला गया वो, उसको लगा कि मारेंगे पकड़ लेंगे बाद में। तो भगवान ने कहा इतनी सुंदर मैंने ये सब तैयार किया है, मेरी कई प्लानिंग्स हैं, ये अर्जुन क्यों पीछे हो रहा है। कारण क्या था कि अर्जुन को भगवान ने उसकी जो बुद्धि है उसको मोहित किया, कारण क्योंकि अभी बड़े सारे क्वेश्चंस करवाने हैं अर्जुन को और भगवान को उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इनको सब मालूम है, लेकिन भगवान को मालूम था कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुगी जीव आने वाले हैं। ये कलयुगी जीव धर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेंगे,
ये रुचि लेंगे केवल इंटरनेट में और मोबाइल में टेलीविजन में। इनकी लाइफ बेचारों की 100 से शुरू होगी, 60, 65, 30, 50 में हार्ट अटैक शुरू हो जाएंगे, बड़ी जल्दी खत्म होने को आएंगे सब, पूरा जीवन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लगे रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या दें, ये तो तपस्या भी नहीं कर सकते, बच्चों को शांत करें, ध्यान भी नहीं कर सकते, यज्ञ भी नहीं कर सकते, इनका प्रोनाउंसिएशन बड़ा खराब है, तो कैसे करवाएं लोगों से भगवान, क्योंकि जो भगवान है वो तो सब आगे पीछे का सब जानते हैं, भगवान के भक्त भी आगे पीछे सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा सीन तैयार किया, ऐसा सब कुछ तैयार किया कि जिससे द्वापर युग के सारे बड़े बड़े राजा, असुर राजा और अच्छे राजा, दो टीम बांट ली, भाई किस तरफ जाना बताओ, एक दुर्योधन साइड, एक अर्जुन साइड, एक अधर्म साइड और एक धर्म साइड। भगवान ने कहा कि मैं इनको मारने जाऊंगा तो मुझे हर जगह जाना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए, कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी वाशिंगटन, कभी, है ना, इन सब देशों में जाना पड़ेगा इनको मारने के लिए। तो काम करते हैं, इन सबको एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, और फिर ऐसी जुआ, ऐसा सब कुछ रचा जिससे कि दोनों टीमें हमें सामने हो गई, ठीक है। ऊपर से कलयुग आना था, हम लोगों को अवतरित होना था, है ना जी, तो भगवान को मालूम था इनको भी संदेश देना है, क्योंकि ये जो ज्ञान है छुप चुका है, श्रमित हो चुका, खंड खंड हो चुका है, तो मुझे फिर से इसको स्टैब्लिश करना है, तो ज्ञान देना था। और फिर जितने भी लोग थे उस ड्रामा में भाग लेने वाले, उन सबको मुक्त भी करना है, है ना जी। उस टाइम के अगर कुछ लोग अभी तक रह जाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, हमारे दरवाजे छोटे पड़ जाते, 10-15 फीट के लोग होते थे। बताते हैं ये 500 साल पहले, 400 साल पहले राजा लोग थे, पृथ्वीराज चौहान, कहते हैं इनकी तलवार ही नहीं उठाई, 4 लोग उठाते हैं तलवार इनकी, सुना है, देखिए 40 किलो का कवच पहनते थे और उसके बाद लड़ने जाते थे लोग। अब मुझे बताइए 40 किलो का कवच पहनने के बाद वो इतनी भारी तलवार उठाते थे, उसके बाद लड़ते थे उससे, हजारों लोगों को काट पीट डालते थे। और अभी क्या होता है, छोटा चाकू भी रख लो पुलिस पकड़ लेती है। कहने का क्या मतलब है कि भगवान ने सारी रचना रची और उसका उद्देश्य केवल यह था कि जितने भी लोग असुर हैं उनका नाश हो, क्योंकि हम लोगों ने आना है, जैसे होता ना कहीं प्रोग्राम हो रहा हो तो इसलिए वाइंड अप जल्दी करते ताकि दूसरी टीम आए परफॉर्म करे, तो उसी तरह द्वापर युग का समय पूरा हो गया था। उसके अलावा भगवान के जो पुत्र थे, जो इतनी बड़ी टीम थी भगवान की, अरब लोग बताते हैं उनकी फैमिली में थे भगवान की, 16,108 रानियां, 16,108 रानियों की 10-10 पुत्र, सबकी एक एक लड़की, और फिर उनके जो पुत्र हुए, फिर उनके जो पुत्र हुए, इस तरह 3-4 पीढ़ी में ये लाख करोड़ तक पहुंच गए जो लोग, और सारे के सारे इतने शक्तिशाली जितने की भगवान, इतने रूपवान जितने की भगवान, इतने समझदार जितने की भगवान, तब यदुवंशों से भर गया पूरा पृथ्वी, तो सब कुछ निपटाना भी था। तो क्या किया, उधर जितने भी गलत मेंटालिटी के लोग थे उनको इकट्ठा किया ताकि वहां पर युद्ध करके खत्म करें, अपने भक्त को ग्लोरीफाई करवाएं, और जितने लोगों ने वहां पर भगवान का दर्शन किया उस युद्ध में, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया और अपने प्राणों को त्यागा, सबको मोक्ष प्राप्त हो गया, सबको भगवान का धाम प्राप्त हो गया, सहज मुक्ति प्राप्त हो गई। अर्थात पूरा पूरा जीवन बेचारे योगी जन ढूंढते रहते भगवान को परमात्मा के रूप में, यज्ञ कर करके लोग परेशान है, धुआं खा खा के, नाना प्रकार की साधना तपस्या कर करके जीवन बिता दिए लोगों ने, मुक्ति नहीं मिली लोगों को, लेकिन केवल उस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया और प्राण त्यागे, सबको सबको मुक्ति प्राप्त हुई। केवल लोग कहते हैं बड़ा भगवान कृष्ण को भगवान क्यों माने भाई, लड़ाई करवा दी, देखो इतने लाखों को मरवा दिया, इतने सारे लोग बेघर हो गए, पूरा का पूरा सिस्टम खराब करवा दिया, बताइए लोगों को, उनका देखने का नजरिया बड़ा मटेरियलिस्टिक टाइप का है, नहीं जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, भगवान की हर लीला, हर कर्म, और जब जब वो अवतरित होते हैं सब दिव्य है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन जो लोग मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को ठीक प्रकार से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, इस शरीर का त्याग करने के बाद वो दोबारा लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आते। कितना सिंपल सेंटेंस, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में अगर ढूंढो
तो एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलता जो भगवान को तत्व से जानता हो, जो ये समझता हो कि भगवान ने जो कर्म किए हैं, जो लीलाएं की हैं, वो दिव्य हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, मतलब अपने नजरों से देखने का प्रयास करते। लेकिन जो भगवान की लीलाओं को जानते हैं, जो भगवान की लीलाओं को समझते हैं, वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को, वो भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान की वही लीलाएं उनके जीवन का केवल मात्र एक साधन होता है इस संसार में रहने का, दैट्स ऑल। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक आदमी है उसको लेना देना ही नहीं है, नहीं जी, उसको कोई लेना देना नहीं। बताते हैं जब भगवान इस पृथ्वी पे थे तो तब भी कोई भगवान को भगवान नहीं मानता था। हो सकते 200-250 लोग भी ऐसे ना हो जो मानते भगवान है, एक साधारण मनुष्य है, अरे नीला रंग का बच्चा है। ब्रह्मा जी तक भ्रमित हो गए, इंद्र ने भी पंगा ले लिया, क्यों? क्योंकि पूजा बंद करवा दी थी भगवान। तो भगवान अपने भक्त में जब जब अहंकार घमंड बढ़ता है तो भगवान उसको ठीक भी करते हैं। और कैसे ठीक किया इंद्र को? मना नहीं किया, करने को एक तीर मारते, ऐसे कुछ फेंकते, ऐसे मर जाता इंद्र। बुला के थप्पड़ मारते, समझाते तो विराट रूप दिखाते तो भी समझ जाता इंद्र, लेकिन ऐसे कुछ नहीं किया क्योंकि लीला करनी है। क्या लीला की? पहले तो उनकी पूजा बंद करवा दी, बंद करो। नंद महाराज कहते नहीं बेटा, ये तो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। कहते पूर्वज कर कोई गलती करते आ रहे हैं इसलिए आप ही करोगे? कहते नहीं, हम पूजा करते तो ये वर्षा करते हैं। कहते इनकी ड्यूटी है वर्षा करने। अब समुद्र कौन से वर्षा, कौन से इनकी पूजा करते, वहां पर तो पानी गिरते बरसात का। हाँ बात तो ठीक कहते हो। हाँ तो फिर कहते गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन हमें गाय को क्या देती है? हरी हरी घास देती है, जड़ी बूटियां देती है हमको ठीक होने के लिए, नाना प्रकार के व्यंजन हम उनके दूध से बनाते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है, खेती हम करते हैं उनकी, तो गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। हाँ गांव वाले कहते बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कृष्णचंद्र भगवान की। जोर से बोलो, आप इंद्र की साइड में हो या भगवान कृष्ण की साइड में? निकल गया होता है, फिल्म देखते थे लोगों को लगता नहीं है गुंडा बेचारा, गुंडा बेचारा केवल लोग विलेन की तरफ हो जाते हैं तो इस प्रकार फिर क्या किया भगवान ने, जब देखा कि इंद्र का घमंड ज्यादा बढ़ चुका है तो ये सुंदर लीला रची। और फिर इंद्र को चढ़ा गुस्सा, इंद्र ने बुलाया अपने उन असिस्टेंट्स को, समंतक बादल थे, वो बादल केवल प्रलय के समय काम आते हैं क्योंकि बरसात की बूंद नहीं करते, वो 2000 लीटर की टंकी जैसे पानी होता ना एक ही बार में छोड़ते, एक बूंद होती है उनकी, मतलब खंभे के बराबर बराबर बूंद गिरती है और खड्डा हो जाता बहुत बड़ा गहरा वहां पर, तो ऐसी बूंदे जो है पड़ने लगी तेज तेज और खूब जो है घमासान वर्षा शुरू हो गई। गांव वाले भागते हुए शीला दीक्षित के पास, ऐसा नहीं था क्योंकि उनके केवल एक चहेते हैं, उनके केवल एक प्राण के जो है रक्षक है, और वो कौन है? कृष्णा। तो उनमें चिल्लाए कृष्णा कृष्णा, चिल्लाइए इतने प्यार से चिल्ला रहे हो, हृदय से चिल्लाइए, क्योंकि हम लोग भी तो दुखी हैं, हम लोग भी तो परेशान हैं, लेकिन हम चाहते हैं डॉक्टर डॉक्टर नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग भगवान के नाम पुकारेंगे तो भगवान, लेकिन हृदय से पुकारना पड़ेगा, बोले कृष्णा कृष्णा, इस प्रकार चिल्लाए। और भगवान ने क्या किया, इतनी घमासान वर्षा में जाकर उस गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर 7 दिन और 7 रातों के लिए उठा लिया। अब भगवान एंजॉय कर रहे हैं अंदर। 7 दिनों तक गांव के जितने भी गांव ब्रजवासी थे केवल कृष्ण को एक टक्के लगाकर देख रहे हैं, जैसे इस समय जो भक्त लोग आगे खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान के मुखमंडल से लोगों की नजरें नहीं हट रही थी, भगवान का दर्शन कर रहे थे और उनको ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, क्योंकि आत्मा का जो है डायरेक्ट जो है कनेक्शन भगवान के साथ चल रहा था, इसलिए बॉडीली रिक्वायरमेंट्स नो मोर। इसलिए वो शुद्ध भक्त होते हैं, जितनी ज्यादा उनके अंदर भक्ति होती है तो उस बॉडी को लेकर इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनकी कम होती जाती है। जैसे रघुनाथ गोस्वामी जी थे, इसी में जो एक फोटो लगी हमने, वो लोग 3 दिन में केवल 100 ग्राम छाछ पीते थे, 3 दिन में एक बार 100 ग्राम छाछ। ऐसा नहीं था कि गिनीज बुक में नाम लिखवाना था उनको, उनका भक्ति का स्तर इतना बड़ा था कि उनके शरीर की जो है जरूरतें समाप्त हो चुकी थी और
हम लोग एक दिन में 3 बार खाते हैं तो भी हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। 3 दिन के बाद, 3 बार के बाद में बीच में भी कई बार चबल चबल करना पड़ता है काफी जगह, ये आ जाए वो आ जाए ये आ जाए ये आ जाए व्हाट नेक्स्ट, है ना, और फिर बीमार हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने जो है इतनी सुंदर लीला रची और उस लीला में सारे के सारे ब्रजवासी भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, भगवान वंशी बजा रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं और ऊपर से परेशान हो रहे हैं, अरे अभी तक नहीं डूबे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इंद्र जब नीचे आए तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो भगवान वही है, अरे यही तो है कृष्ण। और फिर गए कृष्ण के पास माफी मांगने के लिए, भगवान ने छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा जो घमंड था, जो पोस्ट पे मैंने तुम्हें बिठाया इंद्र की, तुम्हें घमंड हो गया था कि यस आई एम द डूअर, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए इस मेंटालिटी को ठीक करने के लिए, ये बताने के लिए कि आप कुछ नहीं हो, ये मुझे करना पड़ा, कि आपकी शक्ति कुछ नहीं है मेरी शक्ति का, क्योंकि ये शक्तियां भी मेरे द्वारा दी गई है आपको इस संसार को चलाने के लिए, इसलिए भगवान ने लीला की। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं इन सब के पीछे एक सिद्धांत है, इन सब के पीछे एक सत्य कथा है, अर्थात इसके पीछे वो मर्म छुपा है जो लोग नहीं जानते समाज के, और इसलिए भगवान को कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप कृष्णा बुक पढ़े, द कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बीबीटी में मिलती है हिंदी इंग्लिश में दोनों में, उसमें भगवान की 90 स्टोरीज है बचपन से लेकर द्वारका लीला तक, उन सारी लीलाओं में रास लीला के पीछे, गोवर्धन के पीछे, ब्रह्मा का जो ब्रह्म लीला, इस सारी लीलाओं के पीछे भगवान का, लीलाओं का तो वर्णन है ही, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसके अंदर प्रपट दिए ये समझाने के लिए कि ये लीला को हम लोग कैसे देखें। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ऐरा गहरा नथु गहरा आपके पास आएगा और बोलेगा, अरे तुम भगवान को मानते हो, तो छलिया था, अरे वो तो गठरी के गीत जिन्होंने गाए तुम उनकी किताबों को पढ़ रहे हो। अरे इस किताब को लोग जन्म लगा देते हैं समझने के लिए, गठरी के गीत जिसे बोले जाते हैं कि ग्वाल वालों ने गीत गाए तुमने लिख दिए किताबों में, ये साधारण ग्वाल वाल नहीं है, ये जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान है। और ये जो शरीर हमारे पास है ये हमारे माता पिता ने दिया, लेकिन जो आत्मा है ये भगवान का अंश है जिसके बेसिस पे शरीर चल रहा है। इसलिए एक बार किसी फिल्म में किसी राइटर को रियलाइज हो गया तो उसने उसमें एक सीन डाल दिया और एक स्टार के माथे पे लिख दिया कि तेरा बाप चोर है। वो बेचारा परेशान रहा पूरी फिल्म में, बताओ कौन है जिसने मेरे सर पे ये लिख दिया कि तेरा बाप चोर है। तो उनसे पूछना चाहिए, परेशान क्यों हो रहे हो तुम, वास्तव में चोर है, हम सबका बाप चोर है, चोर बोले तो माखन चोर, जिन्होंने गोपी के वस्त्र चुराए, जिन्होंने माखन चुराया, जिन्होंने सबके हृदय चुराए। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबको बीज देने वाला पिता मैं ही हूं, अर्थात ये जो आत्माएं हैं ममे वांश जीव लोग जीव भूत सनातन है, सनातन अंश है मेरे, मेरे अंश मतलब ये सारी आत्माएं मेरी हैं। तो इससे हमारा संबंध क्या भगवान से, पिता का संबंध। वास्तव में जब तक हमको ये सिद्धांत क्लियर नहीं होगा भगवान के जन्म और कर्म का, हम कुछ नहीं कर सकते, इस संसार में बार बार आना पड़ेगा और फिर इसी ड्यूटीज को बार बार निभाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, क्योंकि हमने बताया था कि हम लोग भी एक अलग प्रकार के युद्ध स्थल में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, हमारा घर एक कुरुक्षेत्र है, हमारा ऑफिस भी एक कुरुक्षेत्र है, हमारी हर फील्ड कुरुक्षेत्र है, जो भी हमें स्ट्रेस देती है टेंशन देती है वो कुरुक्षेत्र है और हम उसमें अर्जुन हैं। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया ताकि हम जैसे अर्जुन जैसी स्थिति में हम लोगों को क्या ऐसे समय पर जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, हमको क्या करना चाहिए, उस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है और किस प्रकार हमें अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि इसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभो अलाभ हो जाया जाओ तथो युद्धाय जित्सव नैव पाप वाप्य समी, अर्थात तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए भी है किस रूप में कि हमें अपने कर्तव्य को करना है। मेरा जो कर्म है, जो व्यक्ति जिस भी कर्म को कर रहा है, अगर कोई बच्चा है तो उस समय उसकी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई उसके लिए उसका कर्तव्य है,
पेरेंट्स हैं जिनके संतान है तो माता पिता का बच्चों को पालना सही प्रकार से परवरिश करना ये उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। अगर कोई धर्म पत्नी है तो उसका धर्म है कि अपने पति की सेवा करे, इसी से उसको जो है धाम प्राप्त हो जाएगा, ये उसका धर्म है। पति का जो है मुखिया जो घर का उसको सबको सुरक्षा प्रदान करनी, ये उसका धर्म है। इस प्रकार अगर हर कोई अपना धर्म का पालन करे तो ये समाज ठीक ढंग से चल सकता है। जब लोग अपने धर्म के नियमों का पालन बंद कर देते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, अर्जुन ने भी बोला कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो इनकी वाइफ विडोज हो जाएंगी और फिर क्या होगा, वर्ण शंकर फैलेगा, अर्थात वो जो है अनचेस्ट हो जाएंगी, अनफेथफुल हो जाएंगी और फिर वो जो है समाज में अनवांटेड बच्चों को जन्म देंगी, मतलब गलत ढंग से जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सनातन कुल परंपरा समाप्त हो जाएगी और फिर समाज में जो है इस प्रकार की संतानें आ जाएंगी जो कि अवांछनीय कहलाएंगी। जिस संतान को उत्पन्न करते समय संस्कारों का पालन नहीं किया जाता, उस संस्कार उस संसार उस तरह के संतानों से हम लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें। वो बात अलग है कि हमको कुछ पता नहीं था या पता नहीं है, यह हमारी गलती है और उन लोगों की गलती है जिन्होंने धर्म को ठीक प्रकार से नहीं दिया, और उन लोगों की गलती है जो इसी धर्म की आड़ में बिजनेस कर रहे हैं संसार में, और उन लोगों की गलती है जो बेवकूफ बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम नियम को फॉलो करें, हम क्यों ऐसी जगह जाएं जो हमको ऐसा करने को बोले वैसा करने को बोले। अरे धर्म हम लोगों के लिए था, गधे घोड़े बिल्ली शेर के लिए नहीं था, उनके धर्म अलग है। शेर रसगुल्ले नहीं खाता आपकी दुकान में आके, हलवाई की दुकान में आके, उसका धर्म है उसको मांस खाकर अपना जीवन जीना है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य जहां पर पर्याप्त मात्रा में अन्न उपलब्ध है वहां पर वो भी जो है जानवरों को खाए। इसलिए उसकी मेंटालिटी, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका गुस्सा एक शेर या एक जानवर की तरफ हो जाता है, उसके अंदर से दया समाप्त हो जाती है, क्रोध में रहता है हमेशा, और फिर वो ये एक्सपेक्ट करे कि मेरे जीवन में सुख और शांति आ जाए। कैसे? अगर एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो उसको खा सकता है जिसने केवल 12th करी है, ऐसा होना चाहिए क्या? तो समाज में जो जानवर है, ये जो निम्न योनियों में है, ये लोग भी प्राण है, इनके अंदर भी आत्मा और परमात्मा है, इनका भी अपना जीवन है, ये भी ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, अपना घर बनाते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनको पढ़ाते बढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग भी। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल मानसिक संतोष के लिए, जीवा के टेस्ट के लिए हम लोग उनको पकड़कर खा जाते हैं। नहीं नहीं, हम थोड़ी खाते हैं, हम तो ऑर्डर देते हैं बस। हाँ, तो आपने डिमांड करी, सप्लाई बाहर हो रही है, कम से बड़ा होगा आपने, तो वो लोग बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस खोल रहे हैं केवल हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने शरीर पर, अपनी छोटी सी 1.5 इंच की जीवा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग रहा है नहीं नहीं, क्या दिक्कत है, खाने पीने के लिए तो बना है। यस, शास्त्र श्रीमद भागवत में आया था कि जिन जीवों को हमने खाया वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं ऊपर, जब नरकों में जाना होता है वो हमें खाने के लिए तैयार रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि मांस खा सकते हैं, लेकिन एक यज्ञ करना होता है, और उस यज्ञ में महीने में केवल एक बार जिस बकरी को काटना है उसके ऊपर कपड़ा रखना पड़ता है, खुद को भी अंदर जाना पड़ता है, श्लोक बोलना पड़ता है जिसका मीनिंग है कि इस जन्म में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं तुझे मार रहा हूं और खाऊंगा, अगले जन्म में तुम ये बनना और मुझे खाना, ये मीनिंग है। एक सोत्रमणि यज्ञ है जिसको करने के बाद आप 100 ग्राम विस्की पी सकते हो, लेकिन बड़ा पैसा लगता है। लेकिन आजकल लोग केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पीना खाना ये सब करते हैं, और इसके बावजूद इसके शुरुआत शुरू होती है उसकी जीवन गाथा। हमें लगता है कि नहीं, सब बनाया खाने के लिए। अरे बहुत सारी चीजें बनाई खाने के लिए, धतूरा खाइए, पॉइजन खाइए, है ना जी। नहीं नहीं, ये नहीं खाना। क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? क्योंकि कंट्रोल नहीं है इसलिए। तो कंट्रोल हो जाएगा, मनुष्य है ना, कर सकते हैं, हायर इंटेलिजेंस मिला है, गधा घोड़ा बिल्ली शेर थोड़ी है। आप बकरी को जितना मर्जी मारिए फिर खाने के लिए आ जाएगी आपके पास, लेकिन मनुष्य जो है कई बार एक बार बेइज्जती हो जाए दोबारा जाना पसंद नहीं करता। मुश्किल नहीं है, हो सकता है हम में से कई लोग नियम ना पालन कर रहे हो, लेकिन कोई गलत नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हो जाएगा। आप मंदिर आते रहिए, भगवान के नाम जपते रहिए, 2 महीने 4-6 महीने में ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई कंपल्शन नहीं कि कल से आना मत जब तक नियम फॉलो ना हो जाए। अरे सब खाते थे, सब करते हैं, सब में गड़बड़ करिए, लेकिन ठीक होने का तो आशा होनी चाहिए कि नहीं? प्रयास करें, भगवान के नाम लें और देखिए क्यों नहीं होगा। इस मूवमेंट की शुरुआत नशेड़ी और पियकड़ों से हुई है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पर लॉस एंजलिस सॉरी न्यूयॉर्क सिटी में बाउरी स्ट्रीट में सारे हिप्पीज थे, चरस गांजा एलएसडी इलिसिट सेक्स सब कुछ करते थे। प्रभुपाद जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार महामंत्र का जो जप किया कीर्तन किया उनके बीच में, वो भी पीते पीते बजाने लगे, हरे कृष्णा बोलने लगे। उनको थोड़ी मालूम था ये हरे कृष्णा अंदर घुस रहा है और घुसते घुसते उनकी धुलाई कर रहा है, मतलब चेतना की। दो महीने चार छह महीने में दीक्षा हो गई, शुद्ध भक्त बन गए, पूरे संसार में प्रचार करने लगे, आज सन्यासी हैं और 600 मंदिर खड़े कर दिए पूरे संसार में। ये वही है नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे तुम्हें बोल नहीं रहे, तुम इतने कर लो हरे कृष्णा थोड़ा थोड़ा जो कर लो इसी से काम हो जाएगा। इतनी दयनीय स्थिति है भारतीयों की। फॉलो करेंगे जी भारत को, भारत अमेरिका को फॉलो करेंगे, वो गंदे कामों के लिए फॉलो करना बस, नहीं वहां पर तो इतना अच्छा डाइवोर्स रेट चल रहा है 50-80% 90%, हमारे को क्या दिक्कत है। हाँ तो करो, अभी आपका 15% भी पहुंच गया नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं वहां पर तो देखो स्कूल्स के अंदर भी बच्चे ड्रग्स पीते हैं, हाँ तो यहां भी शुरू हो चुका है, करो फॉलो। नहीं नहीं वहां पर तो सब कुछ ओपन है जी, हाँ तो आप भी ओपन हो जाओ। नहीं तो इसमें नहीं करना हमको, अगर हमको करना है तो उनके अंदर जो अच्छे गुण है, जो उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया ऐसी जगहों पर जहां पर हर स्त्री वहां पर हर व्यक्ति जो नंगा घूम रहा है ऐसी जगहों पर ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं बोलो, और उनका ब्रह्मचार्य का एक दिन का पालन भी यहां के एक व्यक्ति के 100 साल की तपस्या के बराबर है, क्योंकि यहां तो कंडीशन फेवरेबल है ना जी। एक व्यक्ति जिसने चोरी की उसे सजा है, लेकिन पुलिस वाला चोरी करता पकड़ा गया तो डबल सजा है। अमेरिका के लोग फॉलो ना भी कर पाए, कई बार होता है इस मूवमेंट में आए जब वो लोग काफी ढंग से फॉलो किया फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर से उनका पतन हो गया, कुछ ऐसे भी थे, लेकिन नुकसान नहीं है ना भक्ति में। स्वल्प मत से धर्म से त्रायतो महतो भयात्, भगवान कह रहे हैं भक्ति के मार्ग में थोड़ी सी भी अगर हमने एडवांसमेंट कर ली उसका कभी क्षय नहीं होता, हमको महान भय से बचा लेती है, तो कोई नुकसान नहीं है। किसी ने अगर थोड़ी सी भी एडवांसमेंट कर ली भक्ति में तो उसको वहीं से शुरू होगा नेक्स्ट लाइफ में। तो हमें फॉलो करना है इस चीज को कि वो किस प्रकार अनफेवरेबल कंडीशन में भी भक्ति कर पा रहे हैं, 16 वाला का जप कर पा रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर पा रहे हैं, और जिस देश में हम रहते हैं जहां पर सारी चीजें फेवरेबल है, कोई भगवान का नाम लेने में आपको मुंह बंद नहीं करता, कोई डंडा नहीं मारता, पुलिस के अंदर आपको जेल में नहीं डालता। रशिया में प्रीचिंग एक व्यक्ति को करी, प्रभुपाद जी ने 3 दिन लगातार बिठा के उसने आज इतना बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया, 250 सेंटर है रशिया में, सबसे बड़ा प्रीचिंग सेंटर हमारा रशिया है, हजारों लाखों की संख्या में डिवोटीज। क्या कर रहा ऐसा? कुछ नहीं, केवल हृदय साफ थे, चेंज होना चाहते थे, सुधरना चाहते थे। तो जो व्यक्ति सुधरना चाहते तो परमात्मा अंदर है ना, परमात्मा उसकी हेल्प करेंगे। अगर व्यक्ति चोरी करना चाहता है तो परमात्मा उसमें भी हेल्प करेंगे, क्योंकि परमात्मा कभी गले में चाकू रख के नहीं बोलते बोल मुझे आई लव यू। हर जीव जो है स्वतंत्र है, सबको माइनेट इंडिपेंडेंस मिली हुई है, उसका यूज कैसे करना है यह हमारे ऊपर है। और हम लोग कैसे जानेंगे कि यूज कैसे कर रहे हैं, ये करना के लिए हमें ऐसे लोगों का एसोसिएशन करना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा जिनकी इस तरह की मेंटालिटी है। उनके बीच में रहने उठने बैठने से हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमको मालूम पड़ेगा इच्छा क्या करनी है, हमें मालूम पड़ेगा क्या चीजों का त्याग करना है। अगर हम बैठे ऐसे खाने पीने वालों के बीच में है सुबह से लेकर शाम तक तो हाँ बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि हमसे हमारे मूवमेंट से जुड़ने वाले लोग सारे के सारे लोग वर्किंग हैं, बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, 6-8 महीने पहले यहीं से घूम रहे थे, भारत जाते हुए अंदर आ गए, आज वो लीडर्स हैं इस सोसाइटी में, हमारे जो मूवमेंट चल रहे हैं, हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं। बड़ी गंदी गंदी आदतें थी, एक एक बाल्टी चाय पीते थे सुबह शाम तक, विस्की भी इतनी पीते थे, सबकी छूट गई। ऐसा नहीं कि सब लोग प्रकांड पंडित है, माता के गर्भ से ब्राह्मण जनू पहन के आए थे बाहर, नहीं, केवल क्या करा, एक क्वालिफिकेशन थी सिंसियरिटी कि हाँ ये साहिबान के पीछे मैं चेंज होना चाहता हूं, बस बहुत हो गया है, नो कि क्या है संसार में, जितना मर्जी भाग लो कुछ हाथ नहीं लगता, जितना मर्जी कर लो सब दुखी दुख है, जितना मर्जी लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करो सब दुखी रहते हैं, कोई रियल फ्रेंड नहीं है यहां पर केवल भगवान के अलावा, तो क्यों ना उनको फ्रेंड बनाए। अगर हमने उनको फ्रेंड बना लिया उनके हम लोग अधिपत्य में सेवा करने लगे, बहुत आसान है इस जीवन से छुटकारा पाना। हर सिचुएशन में सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, बस सिंसियरिटी चाहिए। यस, मैं चेंज होना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना, नर्क जाने के लिए इतनी मेहनत और भगवान के धाम जाने के लिए कुछ भी नहीं करना। अभी जितने लोग मेहनत कर रहे हैं क्यों, नर्क जाने के लिए हो रही है, क्योंकि किसी भी नियम को तोड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आपको अगर मांसाहार करना है तो पैसे चाहिए, फ्री में कोई नहीं देगा, चाहे चार घंटे उसकी दुकान के सामने खड़े रहो, देता कोई कि चल भाई आधा किलो तू भी ले जा, ऐसा होता है क्या? नशा करने के लिए आपको ठेके के सामने खड़ा होने से भी नहीं मिलेगी, उसके लिए भी पैसे चाहिए, और पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। तो मेहनत करो, पैसे लाओ, फिर ये लोग करो वैश्यावृत्ति, अवैध संबंध जो लोग करते हैं, उसके लिए भी व्यक्ति को क्या करना है, पैसे इस्तेमाल करने हैं। पहले प्रलोभन देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा मैं ये हूं और वो हूं, उसके बाद संबंध बनाएगा। जुआ फ्री में नहीं होता है ना जी, जुआ खेलने के लिए लोगों को ये चार नियमों का पालन मुश्किल लगता है लोगों को, कहां अगर फंस गए, इसको तो मंदिर आए थे पता नहीं क्या क्या सुन लिया, ओहो फंस गए, नहीं, बहुत आसान है ये सब करना। तो चार नियमों को तोड़ते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, सुबह से लेकर सुबह सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, लेट आते हैं, फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, फिर खत्म, फिर अगले दिन भागते हैं, फिर कुछ पैसे आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, केवल कहां जाने के लिए? इन नियमों को तोड़ने के बाद व्यक्ति नरक जाता है। नरकों के अगर कहूं तो मैं नाम भी बता दूं, भागवत में पढ़ा है, यहां पे बड़े सारे नरक हैं, 28 प्रकार के मुख्य बताए उसमें, तो इन नरकों में जाता है व्यक्ति। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना, क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि अगर तू मेरा भक्त, मेरे नामों को उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, अपनी चेतना से मेरे बारे में स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, तो निश्चित रूप से इसी जन्म में वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। और भगवान के धाम जाने के लिए हमको इतने सारे कुकर्म करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सबसे सुंदर जीने का तरीका क्या है कि हम लोग सादा जीवन जीने का प्रयास करें। अगर आप सादा जीवन जीने का प्रयास करेंगे, उसी दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना बर्डन आपने अननेसेसरीली अपने सर के ऊपर ले रखा था। अननेसेसरीली कैसे? मुझे ये करना है, फिर वो करना है, फिर इतना इकट्ठा कर लो, फिर समाज में एक रेपुटेशन होगी, फिर मुझे वो मेंटेन करना है, फिर ये करना है, फिर बच्चे के लिए, इतनी सारी डिजायर है। और इतनी सारी डिजायर्स के बेसिस के बाद हम लोग इतनी सारी डिजायर्स के बाद कर्म करना शुरू करते हैं, फिर जब देखते कर्म के रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे जैसे मैं चाह रहा हूं, फिर हम गलत काम करना शुरू करते हैं, और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छाएं कर ली। क्यों? क्योंकि अननेसेसरीली इतनी सारी डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स को अपने सर पर रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ जाए कि हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को इस शरीर के अंदर रखने के लिए ही काम करना है, दैट्स ऑल। रोटी कपड़ा मकान नीड है, चाहिए, अन्यथा ग्रीड कभी खत्म नहीं होती, लोभ बढ़ता जाता है। आग में अगर फ्यूल डालोगे तो फ्यूल से आग बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। कई बार बता चुके, एक बार राजा के पास, दानी राजा के पास एक लालची व्यक्ति पहुंच गया, उसने कहा महाराज मुझे भी कुछ चाहिए थे, बोलो कल सुबह आना 6 बजे। 6 बजे आकर क्या चाहिए? कहते लैंड चाहिए, आजकल बड़ा प्रॉपर्टी, बड़ा मार्जिन है। कहते ठीक है, ये लो झंडा, भागो, जिस दिशा में भागना है झंडा गाड़ कर, सूर्य अस्त होने तक अगर वापिस आ गए तो इतना लैंड तुम्हारा। वो भागा, खूब भागा, बिना पानी, भूखा प्यास, तेज भागा, काफी भागते भागते देखा सर पर आ गया, 50% हो गया, बट उसको लगा थोड़ा सा और कर लूं, जितने कदम कर लेंगे उतने गज ज्यादा हो जाएगा, प्रॉपर्टी की रेट ज्यादा है, करोड़ों में बेचेंगे। और गया, और आगे गया, और आगे गया, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, जब देखा ये तो सामने आ गया सन, ये तो खत्म होने को है, यू टर्न ले लिया, भागा और तेज, लेकिन अब स्पीड तेज होगी, कम होगी उसकी, अब वो खत्म होने को है, और रास्ते में मर गया, 6 फीट जगह दी वहीं गाड़ दिया। कहता हमें मालूम था इतना चलेगा इसका, राजा को मालूम है। उसी प्रकार हमारी जो ग्रीड है, हमारा जो लोभ है, ये कभी खत्म नहीं होता। आए दिन मन हमारी नई नई डिजायर्स करता है, जैसे आजकल आप देखेंगे, आप अगर आप देखते ही होंगे, हम भी देखते हैं, जिस भी मकान के आगे से निकले एक नया रूप रेखा है आजकल, मान लकड़ी लकड़ी लगाकर, है ना, वुड स्टाइल में, जिन्होंने बेचारा ना अभी 20 साल 10 साल पहले 5 साल पहले बड़ी बड़ी कोठियां बनाई है,
और वो परेशान है कि आजकल तो ये स्टाइल चल रहा है ना, तो ऐसा होना चाहिए था। बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूसरे बच्चे के पास ब्लैकबेरी देखते हैं तो घर आके ब्लैकबेरी मांगते हैं, ठीक है। अब एलसीडी के बाद वो 3D टीवी आ गए हैं, उसकी डिमांड करते हैं। इसी प्रकार हम लोग जब मार्केट में रोड पे निकलते हैं तो कोई दूसरी मोटर का साथ में आके खड़ी होती है तो टेंशन हो जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है अपनी नजरों को झांझा घुमाता हुआ देखता है कि परेशानी रहता है वर्तन में। लेकिन जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरा जीवन बड़ा छोटा है और इस छोटे जीवन में मेरे को ये सब टीन टब्बर इकट्ठा नहीं करना, ईंट मिट्टी ये सब, क्योंकि सोने के लिए केवल 6 फीट की जगह चाहिए, ठीक है ना, और खाने के लिए टैंकी जितनी बनाई उससे ज्यादा डाल नहीं सकते, तो बड़ी हर चीज हम लिमिटेड बनाई है। बट लेकिन हमारा मन है, हमारा जो ये जो अनलिमिटेड डिजायर्स मन में फेड हो चुकी हैं, ये कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोभ हमें ले डूबता है। इसलिए जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बात है, सिंपल लिविंग का मतलब क्या है कि जो भी भगवान ने हमें दिया है, जो आसानी से साधारण कर्म करके भगवान को कर्म का फल अर्जित कर अर्पित कर जो हमको इजीली मिल रहा है उसमें खुश रहें। कुछ नहीं होने वाला, हजारों साल से लोग ये सोच रहे हैं अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, आई विल नंबर वन, मैं नंबर वन बनकर दिखाऊंगा इस फील्ड में। हाँ, तो जितने नंबर हुए थे, जितने नंबर वन बने थे, उन नंबर वन को रिकॉर्ड तोड़ के दूसरा कोई नंबर वन है आजकल, तो टूट जाएंगे रिकॉर्ड। नहीं नहीं मैं मूर्ति लगवाऊंगा अपनी, हाँ तो लगवाओ, कौवा हुआ बैठेगा ऊपर फिर देखना। तो इस प्रकार हमारी जो डिजायर्स अनलिमिटेड डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती, और लोभ के कारण हम आगे बढ़ना है किस लिए बढ़ना है मुझे बताइए, केवल रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, केवल रिश्तेदारी में दिखाने के लिए, फ्रेंड सर्कल को दिखाने के लिए मैं कुछ बन गया हूं, अब करो मेंटेनेंस को, लोन लेंगे फिर ये करेंगे फिर वो कर, काफी लोग परेशान रहते हैं इस चक्कर में, और इतनी बुरी स्थिति में केवल दिखावे की लाइफ को जीने के लिए या जीते हुए वो बेचारे कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हुई। तो अगर व्यक्ति सिंपल जीवन जी रहा है, सिंपल लाइफ का मतलब क्या है कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप जो डेली नीड्स हैं आपकी उसको रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, आप साधारण जीवन जी रहे हैं, जितनी भी डिजायर्स आपको दिखाती है कुछ ये चीज ये गाड़ी वो मकान ऐसा स्टाइल, ये सब आएंगे दिमाग में, दिखेंगी भी चीजें, लेकिन इंटेलिजेंस के लेवल पे आके उसको बायकॉट करना है, उसको निकालना है उसको बाहर, तो क्या होगा। इस प्रकार जब भगवान कह रहे हैं गीता में जो जिस तरह विषय हमारे सामने आते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उनको अपने आंखों से निकालता है, मेरे लिए नहीं, जो मेरी किस्मत में होगा, मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसे मुझे मिल जाएगा अगर होगा तो उसको बोलते सिंपल लिविंग, कम में गुजारा, जितना हमारे पास है उसमें। तो जब हम लोग अपना टाइम फिर उन चीजों में वेस्ट नहीं करेंगे, उन चीजों का स्मरण नहीं करेंगे जो अननेसेसरी हमको डिस्टर्ब करती रहती हैं, एक थॉट दिमाग में आता है कि ओ सुबह सुबह ये वाली गाड़ी देखी थी, अभी तो न्यूज़पेपर में भी आया था कि अब तो इंपोर्ट फीस खत्म होने वाली है, सबसे पहले कौन सी गाड़ी लूंगा है ना। तो इस प्रकार थॉट जो हमको डिस्टर्ब रखता है, और इस प्रकार के थॉट्स हमेशा चलने की वजह से व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। जिसके पास साधन नहीं है वो परेशान रहता है, जिसके पास साधन है वो उसको बचाने संभालने उसमें परेशान रहता है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी फील कर रहा है। अगर समवन इज एम्प्लॉयर, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम से परेशान है। एक जो बेचारा 2,000-3,000 की नौकरी कर रहा है उसके अंडर में, वो अपनी रोज की दिनचर्या के चक्कर में परेशान है। जो मैनेजर लेवल का आदमी है वो आपस की पॉलिटिक्स से परेशान है। तो मैंने कहा कि हर जगह व्यक्ति हर लेवल पर परेशान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस धर्म को सही ढंग से पहचान जाए, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, और आत्मा इस शरीर में तब तक रहेगी जब तक कि ये शरीर है, इस शरीर के संबंध भी तब तक है जब तक ये शरीर है, शरीर की रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान बहुत कम है, तो मुझे क्यों भागना और कहां भागना। अगर भागना ही है, पैशन ज्यादा है, तो भक्ति की तरफ भागे ना। गाड़ी अगर तेजी ड्राइव करनी है इसी तरह, तो मंदिर की तरफ आने के लिए करो, कुछ सुनने का मन है तो कृष्ण चैंटिंग सुनो, भगवान के सुंदर सुंदर मंत्र सुनो, कुछ रूप देखने से आकर्षण बढ़ता है। अगर किसी नग्न स्त्री या नग्न पुरुष की तरफ देखे तो काम वासना जागृत होती है, लेकिन अगर भगवान के सुंदर विग्रह और रूप की तरफ देखते हैं तो हम लोग बड़े शांत हो जाते हैं, बड़ा पीस मिलता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या है। इस संसार में दो तरह के लोग बताए भगवान ने, एक दैवी गुण वाले देवता तरह के लोग, और दूसरे असुर तरह के लोग। तो इस संसार में ज्यादातर सब लोग असुर तरह के हैं,
लेकिन हम लोग भगवान के नामों का जप कर कर उनके संदेश का पालन कर कर बहुत आसानी से पाला चेंज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति सेल्फिश है, हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को लूटना खसोटना चाहता है, और जब तक हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो कोई ना कोई पिन चुबाता रहेगा। लेकिन जब हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो सेल्फलेस, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो एक दूसरे को सर्व करना चाहते हैं सेल्फलेसली, ऐसे लोगों के बीच में अगर आपने कुछ दिन बिता लिए तो आपको फिर पता चलेगा कि रिलेशन कहते किसका। अभी तुम जो आर्टिफिशियल लाइफ बाहर जी रहे हैं दिखाने वाली, उसमें बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इन ग्रंथों का अध्ययन करिए, हमारे लिए बोले गए अर्जुन को माध्यम बना के, और अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तुमने अपने कर्म को करते हुए, जो हमारा धर्म है, एक पिता का धर्म, एक पत्नी का धर्म, एक बच्चे का धर्म, उसको पालन करते हुए आपने अगर शरीर का त्याग भी कर दिया, क्योंकि अपने धर्म का पालन करते हुए किया, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर उसको करते हुए मर भी गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर तुम जीत गए तो उसको इंजॉय तो करना ही करना है। लेकिन उसके बाद भगवान आगे कह रहे हैं कि आने वाले समय में, अर्थात असली सेकंड पोजीशन क्या है, कि सुख और दुख में भी आपको विचलित नहीं होना। और वो स्टेट आएगा कब, जब हम लोग आत्मा के स्तर पर आएंगे। और आत्मा के स्तर पर आने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर हम आत्मा के स्तर पर आए, आत्मा का स्तर का मतलब है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें, कीर्तन करें, हरे कृष्ण चैंटिंग के अंदर भगवान की सम्मुख शक्ति का जो है प्रकाश है, अर्थात सम्मुख शक्ति जो भगवान की है, चैंटिंग करते करते व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, गॉड रियलाइजेशन कर लेता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। देखिए वहां पर लिखा है, ये जो गुरु वंदना हम लोग सुबह पढ़ते हैं, गुरु की सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। ये इंपोर्ट नहीं होता, किसी बुक से पढ़कर नहीं आता। जब हम सेवा करते हैं, पुस्तकों को पढ़कर हम लोगों को ज्ञान मालूम पड़ता क्या है, बट ज्ञान को विज्ञान कब बनाते हैं, जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाते हैं, और जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आता है सेवाएं करते हैं, तो फिर ये रियल नॉलेज रियलाइज होती है, और फिर रियलाइज नॉलेज के साथ हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार हमको संसार से बाहर निकलना है। फिर अपने उन सारे कामों को करते हुए, बिजनेस को करते हुए, शॉप खोलते हुए, घर के सारे काम करते हुए, बच्चे स्टडीज करते हुए भी कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, उनको मालूम है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरे को भगवान से संबंध क्या है, और भक्ति कहते किसको है, एक पैर पे खड़े होने को नहीं, यज्ञ करने को नहीं, खूब तपस्या करने को नहीं, ये सारे के सारे मना किए हैं यहां पर। इस कलयुग में केवल हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में तो केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, और केवल हरि का नाम उद्धार करने वाला है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। तो जब भगवान इस सुंदर श्लोक के द्वारा यह बता रहे हैं, तीन तीन बार बोल रहे हैं चीज को, हरेर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, एव, एव का मतलब निश्चय, सर्टेनली, हरे नाम एव, फिर केवलम बोल रहे हैं, केवलम का मतलब कि नॉट ऑनली, इसके अलावा कुछ नहीं, केवल यही ये करना है, और फिर डोंट्स भी बता दिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो इतना फोर्सफुली भगवान वेद नारद पुराण में बोल रहे हैं, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आज से 525 साल पहले जब इस धराधाम पे थे, तो उन्होंने श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया और लोगों को ये हरिनाम दिया, और इस श्लोक का जो है घोष किया कि यही जो नाम पवित्र नाम है भगवान के, ये हमारा उद्धार करने वाले। तो हमारी सिचुएशन जो भी हो, हम हाउसवाइफ हैं, हम वर्किंग हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम रोड छाप हैं, वट एवर वी आर, बट एवरी वन कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अगर कोई व्यक्ति हृदय से प्रार्थना करते हुए भगवान से कोई बात करता है या हरि नाम लेता है उनका, भगवान स्वीकार करते हैं। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को अपने घर 56 भोग खाने के लिए बुलाया, लेकिन घमंड था, 56 आइटम्स आई कुक्ड, मैंने बनाई, भगवान हमारे यहां खाएंगे। और वहां पर विदुरानी, विदुर की जो वाइफ है, उसने भी साग बनाया था भगवान के लिए, वो भी भगवान की बहुत सुंदर भक्ति। तो भगवान ने कहा नहीं, भाव कहां पर है ज्यादा, देखा भाव विदुरानी के पास है ज्यादा, तो उसको कहा नहीं आ रहा मैं तुम्हारे पास, बाय बाय, मुझे नहीं खाना है प्रेजेंसी में,
मेरे लिए ढाबा ठीक है। मिंटू से कि वो उधर आ गए, और उधर आने के बाद विदुरानी ने देखा कि वो कृष्ण मेरे घर, वो परेशान हो गई, मतलब इतनी खुश थी कि केले लेकर आई भगवान के खिलाने के लिए, केले छिले, भगवान को केला फेंक दिया, छिलका खिलाया, भगवान छिलके खा रहे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि विदुरानी का भाव है ऐसे, शबरी का भाव दिखा होगा आपने। शबरी को उसके गुरु ने कहा कि एक दिन तुम्हारे यहां भगवान राम आएंगे, गुरु की वाणी पे इतना विश्वास कि उसने कभी ये नहीं पूछा डेट टाइम कब आएंगे, बताओ ना इंतजार कर रही हूं, कब तक बैठना पड़ेगा, ये क्या मतलब है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, तो क्या किया भगवान का इंतजार शुरू कर दिया, अपने बालों की जो है उस लट से गुत कर झाड़ू लगाती थी उस रास्ते पर, रोज जो है फूलों को तोड़ती थी प्लेट सजाती थी, फल तोड़ती थी प्लेट सजाती थी, और एक तक जो है उस रास्ते पर देखती थी भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे, और कोई व्यक्ति अगर वहां से आता था या चलता था तो उसको मना कर देती थी, भगा देती थी, मारती थी, हट जाओ, क्योंकि ये तो मेरे भगवान राम के लिए रास्ता है। एक दिन बीता, दो दिन बीता, कई दिन बीत गए, साल बीत गए, लेकिन एक फेत था कि मेरे गुरु ने कहा कि भगवान राम आएंगे, और भगवान राम को आना पड़ा, और जब भगवान आए तो भगवान ने भी उसके द्वारा जो है बेर खाए, बेर तो क्या खाए, शबरी, हमको बताया जाता है साधना भक्ति में कि हम जो भी खाएं उससे पहले भगवान को अर्पित करें, तुलसी का पत्ता डालें, भगवान को अर्पित करने के बाद हमको प्रसाद के रूप में खाना चाहिए, यही प्रोसेस हमें करना भी चाहिए, हम शबरी के लेवल पे नहीं है कि कल को आप बोले मैं भी चखती हूँ फिर भगवान को खिलाती, ऐसा नहीं चले। तो शबरी ने क्या करा, बेर को चखा, जो कड़वे थे खट्टे थे उनको फेंक दिया, और भगवान को टेस्ट करके मीठे मीठे बेर खिलाए। लक्ष्मण देख रहे हैं, अरे साधना भक्ति का पालन नहीं कर रही है, इसने ऑफर नहीं किया, गड़बड़ है, ठीक नहीं है, लेकिन भगवान बड़े प्यार से खा रहे हैं। तो भगवान केवल अपने भाव, भक्तों के भाव को खाते हैं। कोई व्यक्ति देखने में लंबी दाढ़ी, लंबे शिष्य, हजारों संख्या में इसके शिष्य घूम रहे हैं, लेकिन अगर उस गुरु जी का एंटीना भगवान से नहीं मिल रहा है, भक्ति का कहीं बीच में गड़बड़ है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कैच नहीं कर रही है तो शिष्यों के साथ जो है उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब लोग पहले खुद अपनी आंखों से पढ़ें, देखें, ठोकियां बजाएं, उसके बाद सब स्वीकार करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना जी। भगवान इतने कृपालु और इतने दयालु हैं कि उन्होंने कलयुग के लोगों को, बेचारे छोटी आयु के लोग हैं, छोटी बुद्धि के लोग हैं, सर चीज भूल जाते हैं, उनको कहा तुम हरे कृष्ण महामंत्र याद करो। चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर सन्यासी थे, इतने 7-8 फीट के थे, गौरांग रूप उनका, और जो कीर्तन करते हुए चलते थे गांवों में, लोग उनको देखते थे और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था, जिसको टच करते थे वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था। इस प्रकार भगवान चल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक व्यक्ति थे, मायावादी सन्यासी, जो वेदांत, वेदों का अध्ययन करते थे और भगवान को निर्विशेष, निर्व वो मानते थे कि कोई आकार उकार नहीं है, वेदों में इस तरह लिखी गई चीजें, क्यों लिखी है इस तरह की चीजें कि भगवान का रूप नहीं है ये सब, क्योंकि हमारे जैसा रूप नहीं है, इस तरह से समझाने के लिए, या हम लोग इन आंखों से नहीं देख सकते इसलिए। लेकिन फिर उन्हीं शास्त्रों में, उन्हीं जगहों पर और जो ग्रंथ लिखे गए, उसमें भगवान के साकार रूप का वर्णन मिलता है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आध्यात्मिक जगत का वर्णन मिलता है, जहां भगवान हर समय लीलाएं कर रहे हैं, अष्टकालीन लीलाएं जिसे बोलते हैं, सुबह कब खड़े होते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर लंच नाश्ता कब लेते हैं, फिर कहां जाते हैं, हर चीज लिखी है रोज की एक्टिविटीज। तो किस सेंस में बता रहे थे हम लोग को, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो प्रकाशानंद ने कहा कि क्या सन्यासी, एक बार आ गए, 10,000 शिष्य बैठे थे मायावादी के, 10,000 शिष्यों के साथ बैठे हुए थे वो, हजारों शिष्य वहां पहुंचे हुए थे, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु भी आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े हम्बली जो है, कौन से शिकारी के स्थान जहां पर सबने चप्पल जूते उतारते हुए बैठ गए, तो अचानक लोगों ने देखा कि ये कौन सन्यासी है, इसके रूप से, इसके शरीर से इतनी कांति, दिव्य कांति बाहर निकल रही है। तो सारे के सारे लोग इनके पास है कि आप अंदर आइए, उस स्थान पर बैठिए। कहते नहीं नहीं, मैं तो इधर ही ठीक हूं, मैं तो इधर ही ठीक हूं। प्रकाशानंद सरस्वती उनके पास है, कहते अरे तुम ही हो चैतन्य, कहते हाँ मैं ही हूं। कहते तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सन्यास ग्रहण करने के बाद वेदों का अध्ययन करने की जगह तुम हरे कृष्णा करते फिरते हो, उछलते कूदते रहते सड़कों पर, ये क्या है, तुम क्यों नहीं सब छोड़कर मेरे साथ बैठते और भगवान, मतलब हमारे साथ वेदों का अध्ययन करते। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने,
देखो मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, अव्वल दर्जे का मूर्ख हूं। भगवान कह रहे हैं एक भक्त के रूप में, मैं मूर्ख हूं और मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तेरे बस की वेदांत वगैरह पढ़ना नहीं है, तुम तो क्या करो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस इसका जप करते रहो। कहते जब से मैंने इस मंत्र का जप किया है मेरे अश्रु, मेरे शरीर पुलकित हो उठता है, मुझे कुछ सूझता नहीं, मैं नाचने लगता हूं, मुझे मालूम नहीं क्या हो जाता है। ये कैसा मंत्र दे दिया है गुरुदेव कि इसको जपते जपते तो मेरे को भाव के विलक्षण प्रकट करते थे चैतन्य महाप्रभु, जो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार जो है जब हरि नाम को उनको बताया तो प्रकाशानंद सरस्वती बाद में उनकी मधुर वाणी से, उनकी फिलॉसफी से बाद में आकर्षित हुए और अपने सारे शिष्यों के साथ उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी। और उन चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे आने वाला कब, 19 मार्च गौर पूर्णिमा, इधर भी सेलिब्रेट करेंगे और वेस्ट बंगाल में जहां चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए वहां पर भी करेंगे। 500 साल पहले आकर चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी पे आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, कि पृथ्वी पे जितने भी नगर और गांव हैं हर जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर जी 200 साल 150 साल पहले आए तो उन्होंने भी भविष्यवाणी करी कि देखना एक दिन ऐसा होगा पूरे संसार से डिवोटीज इकट्ठे होंगे, रशिया कनाडा अमेरिका ताइवान चाइना, और इस धरती पर वेस्ट बंगाल में आकर बोलेंगे जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। चैतन्य महाप्रभु गौर हरि भी बोलते हैं, सच्ची मतलब उनकी माता यशोदा जैसे थी उसी प्रकार यहां पर कौन है, सच्ची माता है। तो जय सच्चिनंदन गौर हरि बोलेंगे, लोग मृदंग लेकर करताल लेकर सड़कों में नाचेंगे, विदेशों में हर जगह हो रहा है, हर जगह कीर्तन निकल रहे हैं, हर जगह प्रचार हो रहा है। और उन पौने 200 से सबके सब इकट्ठे होंगे कहां, मायापुर वेस्ट बंगाल, यहां से कलकत्ता से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहां का जो दृश्य देख ले तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि क्या है वहां पर। इसलिए हर व्यक्ति को इच्छा करनी चाहिए वहां जाने की, क्योंकि वहां पर जाकर निश्चित रूप से हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कितने लोग जाएंगे, जाना कितने लोग चाहते हैं, इच्छाएं तो खड़ी करनी चाहिए। बेशक कभी जा ना पाए, नो प्रॉब्लम, इस साल जाने का प्रयास कर सकते हैं। 1 तारीख से लेकर 19 तक का जो है बहुत सुंदर फेस्टिवल है, कोई 2 दिन जा सकता है, कोई 4 दिन के लिए जा सकता है, सुंदर फेस्टिवल है, जाएं जरूर। लेकिन इसी टाइम पर बच्चों के एग्जाम भी होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग 2 दिन 4 दिन के लिए जाते हैं। तो आप लोग भी प्रयास करें, नहीं तो अगले साल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं, बहुत बुद्धिमान हैं कि आप लोग आते हैं मंदिर में। लेकिन मंदिर में आके एक विजिटर की तरह नहीं रहना, आप इस हरि नाम को अपने जीवन में उतार लीजिए। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होंगे आपसे, बताते हैं जैसे कोई व्यक्ति माला की थाली ले लेता है तो ऊपर ब्रह्मा जी आरती के प्लेट सजा लेते हैं कि वाह, अरे नीचे देखो एक व्यक्ति ने फिर माला ले ली, अब भक्ति शुरू कर रहा है, ये मेरा जीवन सफल हो गया, ये पृथ्वी इसकी संरचना, इस जो मैंने यूनिवर्स को बनाया भगवान की आज्ञा से, और इसलिए बनाया ताकि सारे लोग यहां से भगवान के धाम जाएं, इन्होंने माला शुरू कर दिया, अब तो काम हो गया इनका। भगवान ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी क्रिएशन सक्सेसफुल हो गई ना, एक भी जीव जो है धाम चला जाए तो बड़े खुश होकर नाचते हैं, क्योंकि वेल विशर है हमारे। लेकिन जब वो देखते हैं, अरे ओ मंदिर आया था लक्ष्य सुन रहा, फिर वैसे हो गए फिर नहीं कर रहा बोलने के बाद, अरे थोड़ा तो करो भैया, शुरू करने चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा।